तीसरा, कंबुज देश की धार्मिक दशा। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भारतीय उपनिवेशों के समान कंबुज देश में भी पौराणिक हिंदू धर्म का प्रचार था। कौंडिन्य नामक जिस भारतीय ने इस उपनिवेश का सूत्रपात किया था वह जाति से ब्राह्मण था और पौराणिक धर्म का अनुयायी था। उसी द्वारा कंबुज देश में भारत के पौराणिक हिंदू धर्म का प्रवेश हुआ, जिसे वहां के मूल निवासियों ने अपना लिया। कौंडिन्य के साथ जो अन्य भारतीय उपनिवेशक इस देश में गए थे वे भी जाति के ब्राह्मण तथा धर्म से पौराणिक थे। चौथी सदी के अंत या पांचवीं सदी के प्रारंभ काल में भारतीय उपनिवेशकों का जो नया दल कंबुज देश में गया था उसके सदस्य भी ब्राह्मण जाति के थे और शिव विष्णु आदि पौराणिक देवी देवताओं के उपासक थे। अतः यह सर्वथा स्वाभाविक था कि इस देश में भारतीय के प्राचीन वैदिक या पौराणिक धर्म का प्रचार हो। चीरकाल तक यही धर्म कंबुज देश में फलता फूलता रहा। बौद्ध धर्म का प्रवेश वहां बाद के समय में हुआ, पर पौराणिक धर्म के विरोधी के रूप में नहीं। कंबुज देश के जिन अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया वे शिव और विष्णु आदि के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट करते रहे और वेद शास्त्रों के अध्ययन तथा श्रवण से भी वे विमुख नहीं हुए। शैव धर्म। पौराणिक हिंदू धर्म में शैव और विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कंबुज में इन दोनों की पूजा प्रचलित थी और बहुत से मंदिरों का निर्माण कर इनमें इनकी मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई थी। शिव की पूजा के लिए जहां लिंग का निर्माण किया गया था वहां शिव और पार्वती की मूर्तियां मानवाकार में भी बनाई जाती थी। कंबुज के अभिलेखों में शिव की पूजा का स्थान स्थान पर उल्लेख है। वहां के भग्नावशेषों में शिव आदि पौराणिक देवताओं की बहुत सी मूर्तियां पाई भी गई हैं। कंबोडिया के कंदल स्तुंग प्रांत में वत विहार नाम का एक प्राचीन मंदिर है जहां शिव और पार्वती की सुंदर मूर्ति विद्यमान है। इसमें पार्वती को शिव की बाई जांग पर बैठा हुआ दिखाया गया है। यहां से एक अभिलेख भी उपलब्ध हुआ है जो 7वीं सदी के प्रारंभ का है। 7वीं सदी के प्रारंभ का ही एक अन्य अभिलेख बयांग के मंदिर से मिला है जिसमें विद्याविंदु नामक ब्राह्मण द्वारा जगतपति गिरीश विभु शिव के पद की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। जैसे भारत में विष्णु पद की पूजा का चलन था वैसे ही कंबुज देश में शिव पद की भी पूजा की जाती थी और उसका प्रारंभ 7वीं सदी के शुरू में ही हो चुका था। इससे यह प्रमाणित होता है राजा भव वर्मा के एक अभिलेख में त्र्यंबक लिंग शिवलिंग के निवेश प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया है। वहां लिखा है कि धनुष बाण के बल पर धन संपत्ति की विजय करने वाले और दोनों लोकों इहलोक और परलोक को अपने हाथ में रखने वाले राजा भव वर्मा ने इस त्र्यंबक लिंग को प्रतिष्ठापित किया। शरास नो गौतम जितार्थ दान करस्थलोक द्वितीयेन तेन त्र्यंबकम लिंगमिदम नृपेन निवेशितम श्री भव वर्मना मना। राजा भव वर्मा का काल भी 7वीं सदी में था। यह स्पष्ट है कि 7वीं सदी में शिव की पूजा तीन ढंग से की जाती थी, शिवलिंग से, मानवाकार शिव मूर्ति से और शिव पद से। विविध नामों से शिव की पूजा की प्रथा भी बहुत प्राचीन काल में ही कंबुज देश में प्रारंभ हो गई थी। 7वीं सदी के ही हंचेई अभिलेख में उग्रपुर के शासक द्वारा भद्रेश्वर शिव के लिंग की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इदमुग्रपुराधीश ससु भक्त या लिंग महेश्वरम प्रतिष्ठापित वानत्र श्री भद्रेश्वर संज्ञकम। और इसी काल में एक अन्य अभिलेख में त्रिभुवनेश्वर शिव की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किए जाने का वर्णन है। यह मूर्ति राजा भव वर्मा की बहन और वीर वर्मा की कन्या द्वारा प्रतिष्ठापित कराई गई थी। बीएल कंतेल के इस अभिलेख की कुछ पंक्तियां उद्धरण के योग्य है। वह श्री भव वर्मा की भगिनी तथा वीर वर्मा की पुत्री थी जो अपने पति तथा धर्म की भक्ति में दूसरी अरुंधति थी। हिरण्य वर्मा की उस माता को जिसने पत्नी के रूप में ग्रहण किया ब्राह्मणों में सोम समान स्वामी सोम वेद वेद अग्रणी उस श्री सोम शर्मा ने पूजा विधि और अतुल दान के साथ सूर्य और त्रिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अखंड पाठ के लिए उसने रामायण और पुराण के साथ संपूर्ण महाभारत को प्रदान किया। कंबुज देश के कितने ही अन्य अभिलेखों में शिव की मूर्तियों लिंग मानव व पद के रूप में के प्रतिस्थापित करने का उल्लेख है, उन सब का विवरण देना उपयोगी नहीं है। शिव के उपासक अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रतिस्थापित किया करते थे, जैसे कि श्री सोम शर्मा ने त्रिभुवनेश्वर शिव के साथ सूर्य की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा की थी। इसी प्रकार राजा इंद्र वर्मा ने 801 शकाबद्ध 879 ईस्वी में इस शिव तथा तीन देवियों की स्वशिल्प रचित मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया था। शिव की मूर्तियों की केवल मंदिरों में प्रतिष्ठा ही नहीं की जाती थी, अपितु शिविका पालकी में रखकर उनकी यात्रा भी निकाली जाती थी। राजा यशोवर्मा के बयांग अभिलेख में अमर भाव नाम के एक यतीश्वर का उल्लेख है, जिसे राजा ने उत्तरेंद्राश्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया था। एक तालाब की खुदाई कराते हुए उसे सोने का एक अच्छा बड़ा मंडल मिल गया, जिसे ढलवाकर अमर भाव ने शिव की मूर्ति का निर्माण कराया। इस सुवर्ण प्रतिमा को शिविका में रखकर ले जाया जाता था। सांभवी प्रतिमा एयम सौवर्णे शिवका स्थित नियते ध्यापि यस्तस्या निमित्त म भवत किल। शिव के साथ पार्वती और दुर्गा आदि की मूर्तियां भी कंबुज देश में बनाई जाती थी। राजेंद्र वर्मा के मेवोन अभिलेख में शिव गौरी नारायण ब्रह्मा और गंगा की स्तुति के पश्चात जल राजा के दान पुण्य का उल्लेख किया गया है, तो उस द्वारा सिद्धेश्वरपुर में प्रतिष्ठापित एक लिंग श्री राजेंद्रेश्वर शिवलिंग पार्वती की दो मूर्तियों तथा देवी देवताओं की कतिपय अन्य मूर्तियों का वर्णन है। शिव की मानव रूप में जो मूर्तियां कंबुज देश में बनाई जाती थीं, उनमें उनके शीश पर विराजमान गंगा और चंद्रमा को भी प्रदर्शित किया जाता था। 9वीं सदी के अंत के राजा यशोवर्मा के फनोम संदक अभिलेख में ध्रुजटी शिव का इसी ढंग से वर्णन किया गया है। शिवलिंग की प्रतिष्ठा केवल मंदिरों में ही नहीं की जाती थी, अपितु इस प्रयोजन से ऊंचे मूलाधारों का भी निर्माण किया जाता था। राजा जयवर्मा चतुर्थ के प्रसत आंदोन अभिलेख से 81वें हाथ ऊंचे मूलाधार पर शिवलिंग की स्थापना का वर्णन है और इस कार्य को पूर्ववर्ती राजाओं के लिए दुस्साध्य कहा गया है। संभोरियो लीलया लिंग दुस्साध्यम पूर्व भूभुजाम नवधा नव हस्तांतनम प्रतिमा भीर तिष्ठपद। प्रसत द्रमेयी अभिलेख में भी 81 हाथ की ऊंचाई पर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। उग्रस्य लिंग नवधा गरिष्ठम अतिस्थपदो नवहस्तनिष्ठम। कंबुज के अभिलेखों में शिव के लिए शंभु रुद्र त्र्यंबक शंकर महेश्वर ईशान गिरीश आदि कितने ही ऐसे नामों का प्रयोग किया गया है जो भारत में भी प्रयुक्त होते थे, पर इन अभिलेखों में शिव के कतिपय ऐसे नाम या विशेषण भी आए हैं जिनका संबंध या तो किसी स्थान विशेष के साथ है और या उस व्यक्ति के साथ जिस द्वारा की शिव मूर्ति या मंदिर की स्थापना की गई थी। ऐसे नामों में आमरातकेश्वर गंभीरेश्वर पिंगलेश्वर सिद्धेश्वर उत्पन्नकेश्वर राजेंद्र भद्रेश्वर भद्रेश्वर और त्रिभुवनम महेश्वर आदि उल्लेखनीय है। भारत में भी इसी ढंग से स्थान एवं व्यक्ति के नाम से शिव के विशेषण या नाम रखने की प्रथा रही है। प्राचीन भारतीय परंपरा या मान्यता का अनुसरण करते हुए कंबुज देश में भी शिव की अष्ट मूर्तियों या अष्ट तनुओं का प्रतिपादन किया गया है। 9वीं सदी के इंद्र वर्मा के बकोंग अभिलेख में शिव की अष्ट मूर्तियों का उल्लेख है। राजा वृति रितेश्य सोष्ठ मूर्ति रतिष्ठपत और इसी काल के एक अन्य अभिलेख में शिव के आठ तनुओं का नमः शिवाय यो मूर्ति रप्पस तनु भी स्थित। वैष्णव धर्म शिव के समान विष्णु की पूजा भी कंबुज देश में भली भांति प्रचलित थी और उनकी भी मूर्तियां प्रतिस्थापित करने का अनेक अभिलेखों में वर्णन है। विष्णु के लिए वहां अच्युत हरि माधव वासुदेव कृष्ण नारायण त्रिविक्रम पद्मनाभ आदि कितने ही नामों का प्रयोग किया गया है जो विष्णु के पर्यायवाची हैं। कंबुज के सबसे पुराने अभिलेखों में विष्णु की ही स्तुति की गई है और उन्हीं की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है। कंबुज क्षेत्र से प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख हुनान के राजा जयवर्मा का है, जिसका शासनकाल 405 से 514 ईस्वी तक था। क्षीर समुद्र में शयन करने वाले एवं भुजंग के फण को पर्यंक पलंग के रूप में प्रयुक्त करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति इस अभिलेख में इन शब्दों में की गई है। युंजन योग मति किंत धमपि यह क्षीरो दश्याह गृह शेते शेष भुजंग भोग रचना पर्यंक पृष्ठाश्रित कुच्छी प्रांत समाश्रित त्रिभुवनो नाभ्युत्थिथा मोरुह रागिम श्री जयवर्मणो ग्रह महिषम स स्वामिनी रक्षतु। पुनान के राजा जयवर्मा की पटरानी अग्र महिषी कुल प्रभावती थी। ब्राह्मणों द्वारा आबाद कुरुम्ब नगर में उसने विष्णु की एक मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई थी और उसके साथ एक तटाक तालाब तथा आराम निवास गृह का भी निर्माण कराया था। जयवर्मा और कुल प्रभावती के पुत्र गुणवर्मा के एक अभिलेख में भी चक्र तीर्थ स्वामी विष्णु के वैष्णव पद को प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। इसमें संदेह नहीं कि पांचवीं और छठी सदियों में ही कंबोडिया के क्षेत्र में विष्णु और विष्णु पद की पूजा का प्रारंभ हो गया था। नौवीं सदी के प्रसिद्ध कोक अभिलेख में सबसे पूर्वी चक्री चक्र पाणी पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु की स्तुति की गई है और फिर पृथ्वी नंद्र पंडित श्रीनिवास कवि द्वारा हरि विष्णु के मूर्ति के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है। इस श्रीनिवास कवि की भांजी की पुत्री का विवाह जयेंद्र वर्मा के साथ हुआ था जिसके पुत्र का नाम अमृत गर्भ था। इस अमृत गर्भ ने ईटों द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसमें हरि की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी। अंगकोर थोम क्षेत्र के एक मंदिर पर उत्कीर्ण एक अभिलेख में राजा यशोवर्मा के मामा विक्रमांत द्वारा प्रभु विष्णु की एक प्रतिमा के स्थापित किए जाने का वर्णन है। राजा जयवर्मा पंचम के गुरु यज्ञ वराह का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसने एक संबंधी का नाम धर्म बांधव था और उसे पृथ्वी विंद्र उपाधि प्राप्त थी। उस द्वारा भी प्रभु विष्णु की एक मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई गई थी। बंते स्त्रेयी के एक अभिलेख में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव और विष्णु में अभेद मानकर उनकी संयुक्त मूर्तियों के निर्माण तथा पूजा की प्रथा भी कंबुज देश में प्रारंभ हो गई थी। राजा ईशान वर्मा के अंगपुर अभिलेख में इस राजा द्वारा शंकर और अच्युत शिव और विष्णु की अर्ध शरीर प्रतिमा के बनाए जाने का वर्णन है। शंकराच्युतोर धरशरी प्रतिमा मिताम और इसका प्रयोजन यह बताया गया है कि एक ही स्थान पर दोनों की पूजा की जा सके। ईशान वर्मा के ही एक अन्य अभिलेख में भी हरि और शंकर की संयुक्त मूर्ति का वर्णन है जिसे ताम्रपुर के शासक ने प्रतिष्ठापित कराया था। इन दोनों अभिलेखों का समय 7वीं सदी है जिससे सूचित होता है कि इस काल तक शिव और विष्णु में कंबुज के लोग अवैध मानने लग गए थे। कितने ही अभिलेखों में शिव विष्णु हरिहर आदि के रूप में भी इन प्रमुख पौराणिक देवताओं की संयुक्त मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। विष्णु ने तीन पादों से संपूर्ण ब्रह्मांड को अतिक्रांत कर दिया था। पुराणों की यह गाथा थी कंबुज के अभिलेखों में परिलक्षित है। राजा जयवर्मा चतुर्थ के प्रसत नेयंग अभिलेख में उस लोकनाथ विष्णु की स्तुति की गई है जिसने की पृथ्वी व्योम और ब्रह्मांड मंडल को तीन पदों को अतिक्रांत कर दिया था। त्रिपदाकांत धरणे व्योम ब्रह्मांड मंडल यह अभिलेख जहाँ उपलब्ध हुआ है उसके समीप ही एक मंदिर में विष्णु को तीन पगों द्वारा संपूर्ण विश्व को अतिक्रांत करते हुए चित्रित किया गया है। वहीं पर एक अन्य चित्र है जिसमें कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः कंबुज देश में वैष्णव धर्म का भी प्रायः उसी प्रकार से प्रचार था जैसे कि शैव धर्म का। अन्य पौराणिक देवी देवता कंबुज के अभिलेखों में अन्य भी बहुत से पौराणिक देवी देवताओं के स्तुति परक श्लोक हैं या उनकी मूर्तियों के मंदिरों में प्रतिष्ठापित किए जाने का वर्णन है। पौराणिक हिंदू धर्म का शायद ही कोई देवी देवता हो जिसका उल्लेख कंबुज के अभिलेखों में विद्यमान न हो। हिंदू धर्म की देव त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा की पूजा भी कंबुज देश में प्रचलित थी। कितने ही अभिलेखों में शिव और विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा की भी स्तुति की गई है और ब्रह्मा के अतिरिक्त उनके लिए चातुरास से अम्भोजनमा पद्मोद्भव चतुर्मुख अम्बोजभु नाभिनालिनोत्पुन आदि नामों व विशेषणों का प्रयोग किया गया है। शिव और विष्णु के समान ब्रह्मा की मूर्तियां भी कंबोज में प्रतिष्ठापित की जाती थीं। शिवाचार्य के बनते कदेई अभिलेख में इस आचार्य द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों के स्थापित किए जाने का उल्लेख है। तेनवो स्थापितौ देवौ चतुरास्य चतुर्भुजौ सूर्य गणेश कार्तिकीय गणपति यम आदि देवताओं और दुर्गा गंगा वागीश्वरी गौरी सरस्वती चतुर्भुजा आदि देवताओं का भी कंबुज के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। इन विविध देवी देवताओं की भी यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती थीं और मंदिरों में उन्हें प्रतिष्ठापित किया जाता था। याज्ञिक कर्मकांड। भारत के प्राचीन धर्म में यज्ञों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और देवी देवताओं की पूजा के लिए याज्ञिक कर्मकांड का ही अनुष्ठान किया जाता था। उस समय देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था, पर बाद में उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी और मूर्ति पूजा का पौराणिक भारतीय धर्म में प्रमुख स्थान हो गया। जो भारतीय उपनिवेशक कंबुज देश में जाकर बसे वे मूर्ति पूजक थे, इसीलिए उन्होंने शिव विष्णु आदि की मूर्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। पर हिंदू धर्म से यज्ञों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। विशेष अवसरों पर तथा विशेष प्रयोजनों के लिए भारत में भी यज्ञ किए जाते थे। कंबुज में भी यही दशा थी, इसी कारण वहां के अभिलेख में अनेक स्थानों पर याज्ञिक अनुष्ठानों का भी उल्लेख मिलता है। 10वीं सदी के फनोम प्रहनेत प्रह मंदिर अभिलेख में मध्य देशा नाम की एक स्त्री का वर्णन है जो राजकीय मंदिर की मालिनी मलिन थी। उसने ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ के संबंध में अभिलेख का यह श्लोक उद्धरण के योग्य है। आसहस्त्रात् याज्ञानाम् ब्रह्म यज्ञम महत्तरम सर्वास्त्री गुरु रस्माद् ब्रह्म यज्ञम कृतम इतया। राजा उदयादित्य वर्मा के स्तोक कक थूम अभिलेख के अनुसार जयेंद्र पंडित इस राजा का राजगुरु था। जयेंद्र पंडित ने भुवनाध्व तथा ब्रह्म यज्ञ सदृश अनेक यज्ञ राजा से करवाए थे और इनके अनुष्ठान के पश्चात जो दक्षिणा राजा द्वारा दी गई थी उसमें बहुत से मुकुट कुंडल केयूर कटक रुप्य पीठ स्वर्ण कलश चमर मणि माणिक्य सुवर्ण और चांदी के अतिरिक्त 1000 गौएं 200 हाथी 100 घोड़े 100 बकरियां तथा भैंसें और 1000 दास दासी भी थे। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 11वीं सदी के फनोम प्र अभिलेख में उन पंडितों की वंश परंपरा दी गई है जो राजाओं के होता पद पर अधिष्ठित रहे थे। ये होता निम्नलिखित थे: जयवर्मा द्वितीय का प्रण वात्मा, यशोवर्मा का शिखा शिव, राजेंद्र वर्मा का शंकर, जयवर्मा पंचम के नारायण और शिवाचार्य। देवराज संप्रदाय। भारत के पौराणिक हिंदू धर्म में कंबुज देश में एक नए संप्रदाय का विकास हुआ जिसे देवराज या जगत्ता राजा कहते थे। कई सदियों तक यह कंबुज देश का राजधर्म रहा। इसका प्रारंभ 9वीं सदी में हुआ था जबकि राजा जयवर्मा द्वितीय कंबुज के राज सिंहासन पर विराजमान थे। इस संप्रदाय के प्रादुर्भाव पर पिछले अध्याय में भी प्रकाश डाला जा चुका है। कंबुज के अभिलेखों में स्तोक काकथूम अभिलेख अत्यंत महत्व का है। उसमें राजपुरोहित के एक ऐसे परिवार का विशद रूप से वृतांत दिया गया है जिसका देवराज संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था। यह परिवार पहले इंद्रपुर विषय जिले के भद्रयोगी नामक गांव में निवास करता था। जब परम भट्टारक परमेश्वर जयवर्मा द्वितीय शासन करने के लिए जावा से इंद्रपुर आए तो उन्होंने इस पुरोहित परिवार के श्रीमान गुरु शिव कैवल्य को अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। फिर परम भट्टारक ने इंद्रपुर छोड़ दिया और वे पूर्व दिशा विषय चले आए। उनकी आज्ञा से शिव कैवल्य भी अपने संबंधियों के साथ वहीं आ गए। परम भट्टारक ने वहां उन्हें भूमि प्रदान की और कुटी नामक एक गांव बसाकर वहां वह भी उन्हें दे दिया। फिर परम भट्टारक हरालय नगरी में चले गए और शिव कैवल्य भी अपने परिवार के साथ वहीं निवास करने लगे। फिर परम भट्टारक ने अमरेंद्रपुरी नगरी बसाई और शिव कैवल्य भी उनकी सेवा में उसी नगरी में चले आए। शिव कैवल्य ने वहां राजा से एक भूखंड मांगा और वहां भवालय नामक एक गांव बसाया। अपने परिवार व सब संबंधियों को उन्होंने कुटी से भवालय बुला लिया। उनके आदेश से गंगाधर नामक ब्राह्मण ने भवाले में एक शिवलिंग की भी स्थापना की। परम भंडारक अमरेंद्रपुर से महेंद्र पर्वत गए और शिव कलबल्ले भी उनके साथ वहीं चले गए। जब परम भट्टारक जयवर्मा महेंद्र पर्वत में निवास कर रहे थे, हिरण्यदामा नामक ब्राह्मण जनपद संभवतः भारत से वहां आया। वह तंत्र मंत्र विद्या में परम निष्णात था। राजा ने उसे ऐसा विधान पुरुष चरण तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था जिससे कंबुज देश जावा के अधीन न रहे और वहां का राजा अपने राज्य में चक्रवर्ती बनकर रहे। हिरण्यदामा ने वह विनाशिक तंत्र के अनुसार विधि बनाई और जगत्ता राज देवराज को प्रतिष्ठापित किया। उसने वह विनाशिक नयोत्तर सम्मोह और शिरच्छेद की शिक्षा दी और उन्हीं आदेश आदि से अंत तक भूलकर लिखवा दिया। हिरण्यदामा ने शिव कैवल्य को भी यह भी सिखा दिया कि देवराज की पूजा का अनुष्ठान कैसे किया जाए। राजा जयवर्मा द्वितीय तथा ब्राह्मण हिरण्यदामा ने तब यह शपथ ली कि जगत ताराज विधि का अनुष्ठान करने के लिए केवल शिव कैवल्य के परिवार को ही काम में लाया जाएगा, किसी अन्य को नहीं। शिव कैवल्य ने यह विधि अपने सब संबंधियों को सिखाई। इसके बाद राजा हरि हरालय लौट गए और जगत ताराज को भी वहीं ले जाया गया। शिव कैवल्य और उनके संबंधी वहीं भी पूर्वत पौरोहित्य करते रहे। शिव कैवल्य और राजा जयवर्मा द्वितीय की मृत्यु हरि हरालय में ही हुई। जयवर्मा द्वितीय के उत्तराधिकारी परम भट्टारक विष्णुलोक जयवर्मा तृतीय के शासनकाल में भी जगत ताराज हरि हरालय में प्रतिष्ठापित रहे। शिव कैवल्य के बाद कोई 250 साल तक उनके वंशज एवं संबंधी कंबुज राजाओं के राजपुरोहित रहे और हिरण्यदामा द्वारा प्रतिपादित विधि का अनुष्ठान करके देवराज या जगत्ताराज की पूजा करने में तत्पर रहे। ये देवराज भगवान कंबुज देश के संरक्षक माने जाते थे और वहां के राजा उन्हें रक्षक देवता मानकर उनकी पूजा कराया करते थे। जयवर्मा द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा जो अनेक नई राजधानियां बसाई गईं, उन सब में इस देवता को प्रतिष्ठापित किया गया और उसकी पूजा वाद रूप से जारी रही। देवराज जगत्ताराज का क्या स्वरूप था और उसकी पूजा विधि क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है। यह माना जाता है कि देवराज की प्रतिमा लिंग या शिवलिंग के रूप में बनाई जाती थी और उसे ऐसे मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाता था जो किसी ऊंचे स्थान पहाड़ी के शिखर या कृत्रिम रूप से निर्मित अत्यंत ऊंचे मूलाधार पर विद्यमान हो। शिव को कैलाश का निवासी माना गया है जो हिमालय के इस उच्च शिखर पर रहते हुए जगत का पालन करते हैं। जगत ताराज भी लिंग के रूप में एक ऊंचे स्थान पर जो कैलाश का प्रतीक होता है प्रतिष्ठापित होकर कंबुजराज की रक्षा किया करते थे। देवराज जो शिव की ही एक रूप था कि पूजा के लिए जिस विधि का प्रतिपादन ब्राह्मण हिरण्यदामा द्वारा किया गया था वह तंत्र शास्त्र पर आधारित थी। जिन चार शास्त्रों की शिक्षा हिरण्यदामा द्वारा शिव कैवल्य को दी गई थी वे शैव आगमों के अंतर्गत थे। इनमें नयोत्तर सबसे पुराना था और प्राचीन शैव आगम का अंगभूत था। अन्य तीनों शास्त्रों की रचना बाद के काल में हुई थी, यद्यपि उन्हें भी शैव आगम में सम्मिलित कर लिया गया था। सातवीं और आठवीं सदियों में भी इन चारों शैव शास्त्रों का अध्ययन हुआ करता था और इन्हें शैव आगम के प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते थे। ब्राह्मण हिरण्यदामा ने इन्हीं की शिक्षा शिव कैवल्य को प्रदान की थी और इस प्रकार उसने कंबुज देश में शैव धर्म के एक ऐसे संप्रदाय का सूत्रपात किया था जो भारत में पहले ही प्रचलित था। सातवीं सदी तक भारत में वज्रयान वाम मार्ग आदि ऐसे संप्रदायों का विकास हो चुका था जिनमें की तांत्रिक क्रियाओं का प्रमुख स्थान था। शैव धर्म भी उस युग की इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं रहा था और उसका भी एक ऐसा संप्रदाय विकसित हो गया था जिसमें तंत्र मंत्र को पर्याप्त महत्व दिया जाता था। जयवर्मा द्वितीय के समय में हिरण्यदामा द्वारा देवराज शिव की जिस पूजा विधि का कंबुज देश में प्रारंभ किया गया था वह शैव धर्म के एक तांत्रिक संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित थी। इस विधि में यागिक अनुष्ठान का भी महत्वपूर्ण स्थान था। जैसा कि राजा राजेंद्र वर्मा ने बक्सेई चमकन अभिलेख से सूचित किया है। वहां लिखा है कि राजा जयवर्मा द्वितीय ने महेंद्र शिखर पर पैर जमाकर कोटि यज्ञ किए थे। जयवर्मा द्वितीय के समय में ही देवराज शिव की पूजा का कंबुज देश में प्रारंभ हुआ था और इस राजा ने देवराज के लिंग को अपनी राजधानियों में प्रतिष्ठापित करने में विशेष तत्परता दिखाई थी। उसने जिन कोटि यज्ञों का अनुष्ठान किया था वे देवराज के लिंग को प्रतिष्ठापित करने तथा उसकी पूजा के संबंध में ही किए गए होंगे। यह कल्पना असंगत नहीं होगी। राजा जयवर्मा द्वितीय ने जो यह शपथ ली थी कि राजपुरोहित का पद केवल शिव कैवल्य के परिवार में ही रहे, इसका भी कारण था। भारत में शिवाचार्य पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति प्रायः उत्तर भारत के ऐसे ब्राह्मण परिवारों में से ही लिए जाते थे जो कि शैव आगम में निष्णात हों। कंबुज देश में ऐसे परिवार अधिक नहीं थे जो कि शैव शास्त्रों के पंडित हों। भारत से गए ब्राह्मण हिरण्यदामा ने शिव कैवल्य को शैव आगमों में भली भांति प्रशिक्षित कर दिया था, जिसके कारण राजा जयवर्मा ने यह व्यवस्था की थी कि कंबुज के राज पुरोहित का पद शिव कैवल्य के परिवार में ही स्थिर रहे। भारत में चूल राजा राजेंद्र चूल ने तंजोर के राज राजेश्वर मंदिर के पुरोहित पद पर शिवाचार्य शिव पंडित को नियुक्त किया था। यह पंडित आर्य देश आर्यावत या उत्तर भारत के निवासी थे। राजेंद्र चूल ने आदेश दिया था कि राज राजेश्वर मंदिर के पुरोहित आर्य देश मध्य देश और गौड़ देश से ही लिए जाए करें, अन्यत्र से नहीं। इसी प्रकार भटगांव नेपाल के मल्लवंशी राजाओं ने भी यह व्यवस्था की कि उनके राजा राज्य में केवल गौड़ देश के पंडित ही पुरोहित हुआ करें। इस दशा में यदि कंबुज देश में राजा जयवर्मा ने भी पुरोहित के पद को शिव कैवल्य के परिवार जो कि शैव आगम में निष्णात हो गया था में स्थिर रखने की व्यवस्था की हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देवराज संप्रदाय में जहां कैलाश पर्वत के प्रतीक के रूप में किसी उच्च स्थान पर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया जाता था, वहां साथी राजा तथा उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों की भी मूर्तियां स्थापित की जाती थी। कंबुज देश में राजा को दैवी माना जाता था और देवता के रूप में उसकी पूजा भी की जाया करती थी। मृत्यु के अनंतर राजा को एक ऐसे नाम दे दिया जाता था जिससे कि यह सूचित हो कि उसने देवत्व की प्राप्ति कर ली है। मृत्यु के बाद राजा हर्षवर्मा प्रथम को परम रुद्रलोक, जयवर्मा चतुर्थ को परम शिवपाद, हर्षवर्मा द्वितीय को ब्रह्मलोक, सूर्यवर्मा प्रथम को निर्वाण पद, जयवर्मा सप्तम को महापरम सौगत, जयवर्मा द्वितीय को परमेश्वर के नाम से प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार के नाम कंबुज के अन्य भी बहुत से राजाओं को दिए गए थे जिनका उल्लेख वहां के अभिलेखों में विद्यमान है। इन राजाओं की देव रूपी मूर्तियां बनाकर उन्हें भी देवराज शिव के लिंग के समीप मंदिर में स्थापित कर दिया जाता था और उनकी भी पूजा की जाती थी। कंबुज के कतिपय राजाओं ने शैव धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर देवराज की पूजा की परंपरा को उन्होंने भी कायम रखा था। मृत्यु के पश्चात इनकी भी प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। यद्यपि उनके नाम महापरम सौगत सत्रिश थे जो उनके बौद्ध होने को सूचित करते हैं, राजाओं के साथ उनके पूर्वजों तथा कतिपय विशिष्ट पारिवारिक जनों के देवरूप में मूर्तियां स्थापित करने की प्रथा भी देवराज संप्रदाय में विद्यमान थी। 9वीं सदी के राजा यशोवर्मा के एक अभिलेख में देवी देवताओं के ये नाम आए हैं: इंद्र वर्मेश्वर, इंद्र देवी, माया यतीश्वर और राजेंद्र देवी। इनमें से पहले दो राजा यशो वर्मा के माता पिता के नाम पर थे और बाद के दो उसकी माता के पिता माता के नाम पर। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। दिवंगत राजा एवं उसके पूर्वजों आदि के नाम से जो देव मूर्तियां बनाई जाती थी उनकी मुखाकृतियां भी उन्हीं के समान होती थी। देवराज संप्रदाय की पूजा विधि का मूल स्रोत भारत ही था और वहां के शैव धर्म के एक तांत्रिक मत से ही उसका ग्रहण किया गया था। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि दिवंगत राजा और उसके पूर्वजों को देवी मानकर देवता के रूप में उनकी मूर्तियां स्थापित करने की पद्धति भी भारत से ही ली गई थी। भारत के मनु सदृश स्मृतिकारों ने राजा को देव संबुद्ध और देव पुत्र माना है। 33 देवराजों ने अपने अंश प्रदान कर सब देवताओं के पुत्र रूप में राजा का निर्माण किया। त्रयस्त्रिन शैदर्वम राजेंद्र भार्गो दत्तो नृपस्य ही पुत्रत्वे सर्वदेवैश्च निर्मतो मनुजेश्वर। यह मंतव्य स्मृतिकारों को स्वीकार्य था। भारत का यह मंतव्य कंबुज देश में भी गया और वहां राजा को देव संभूत मानकर उस देवराज का अंश समझा जाने लगा। शिवलिंग के रूप में वहां जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती थी और जिसे राज का रक्षक माना जाता था। दिवंगत पूर्वजों की मूर्तियां बनाने और उनमें देवत्व का ध्यान कर पूजा के प्रयोजन से उन्हें मंदिरों में प्रतिष्ठापित करने की प्रथा भारत में भी विद्यमान थी। इसके कतिपय संकेत मिलते हैं। भास के प्रतिमा नाटक में दशरथ तथा अन्य पूर्वजों की मूर्तियों को मंडप में स्थापित करने का उल्लेख है। मथुरा में कुषाण राजाओं की मूर्तियों को देवमाला के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया था, जिनके अवशेष अब भी उपलब्ध हैं। देवराज संप्रदाय की पूजा विधि तथा स्वरूप के विषय में अधिक लिख सकना संभव नहीं है, क्योंकि इस संबंध में आवश्यक सामग्री अभी प्रकाश में नहीं आई है। पर इसमें संदेह नहीं कि 3 सदियों 9वीं से 11वीं सदियों तक यह कंबुज देश का राजधर्म रहा। बौद्ध धर्म। यद्यपि पौराणिक हिंदू धर्म का कंबुज देश में प्राधान्य था, पर बौद्ध धर्म का भी वहां प्रवेश आरंभ हो गया था। कंबुज में बौद्ध धर्म की सत्ता का सबसे पुराना प्रमाण प्रसत तो कम अभिलेख 791 ईस्वी है, जिसमें कि लोकेश्वर की प्रतिमा का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख इस प्रकार है। समगुण शशि नागशा के प्रथितो यस्य सुप्रतिष्ठतो भगवान जगदीश्वर इति नामना स जयति लोकेश्वर प्रतिमा। लोकेश्वर से यहाँ अवलोकितेश्वर का अभिप्रेत है। यह विद्वानों ने प्रतिपादित किया है। अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व था, जिसकी पूजा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में की जाती थी। 8वीं सदी में महायान संप्रदाय का कंबुज देश में प्रवेश हो चुका था और वहां बोधिसत्वों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठापित की जाने लगी थी। यह इस अभिलेख से सूचित होता है। पर बौद्ध भिक्षु इससे पहले भी कंबुज देश में विद्यमान थे। इस बात का संकेत राजा जयवर्मा प्रथम के वत् प्रेयीवार शिलालेख में मिलता है। इसका काल 665 ईस्वी है। इस शिलालेख में रत्न भानु और रत्न सिंह नामक 2 भिक्षुओं का उल्लेख है, जो कि सहोदर भाई थे और जिनकी भांजी के पुत्र का नाम शुभ कीर्ति था। जयवर्मा ने एक धार्मिक संपत्ति के उपभोग का वंशाक्रमानुगत कुल क्रम संतति के रूप से अधिकार अपने राजकीय आदेश द्वारा इस शुभ कीर्ति का प्रदान किया था। वत्प्रेयी वार शिलालेख में रत्न भानु और रत्न सिंह को स्पष्ट रूप से भिक्षु राज्य भिक्षु वरिष्ठ सहोदरों कहा गया है, और यह समझा जाता है कि ये बौद्ध भिक्षु ही थे जो कि कंबुज देश में बसे हुए थे। पर इनका बौद्ध भिक्षु होना पूर्णतया निर्विवाद नहीं है, क्योंकि इस शिलालेख में संन्यासस्ते और साधु भी शब्द भी इसी प्रसंग में आगे चलकर आए हैं, जिनसे इनका पौराणिक भिक्षु या साधु हो सकना भी असंभव नहीं कहा जा सकता। प्रसत्तकम अभिलेख 791 ईस्वी के पश्चात 1 सदी के लगभग तक कंबुज देश में कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिलता जिससे कि बौद्ध धर्म का उल्लेख हो। इस काल में वहां पौराणिक हिंदू धर्म का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ। यद्यपि बौद्ध लोग भी अपने धर्म के प्रचार में तत्पर रहे, इसी का यह परिणाम हुआ कि जब राजा यशोवर्मा 889 ईस्वी ने विविध धार्मिक आश्रमों का निर्माण करा के उन्हें भरपूर मात्रा में दान दक्षिणा प्रदान की, तो बौद्ध आश्रमों की स्थापना पर भी उसने ध्यान दिया। यशोवर्मा स्वयं पौराणिक हिंदू धर्म का अनुयायी था, पर अपनी प्रजा को दृष्टि में रखकर उसने यह भी आवश्यक समझा था कि कंबुज में निवास करने वाले बौद्ध लोगों के लिए भी आश्रमों का निर्माण कराया जाए। तेप प्रणप अभिलेख के ये श्लोक अत्यंत महत्व के हैं। स श्री यशोवर्मन नृपो नृपेंद्र कंबुज भूपति सौगात भ्युदयायतम कृतवान सौगात श्रम मम श्री संद विधि संसक्ता शीलाद्य यत्न तत्परा गृहस्थ कर्म निर्मुक्ता यतयो विजितेन्द्रिया वर्षास्वनयस्य इता एक भक्तेन जीविना स्वधर्म कर्म शाक्तास्ते वास्तव्या सौगात श्रमे। कंबुज देश के स्वामी नृपेंद्र राजा भी यशो वर्मा ने सौगत बौद्ध लोगों के अभ्युदय के लिए सौगत आश्रम का निर्माण कराया था और उसके संबंध में यह व्यवस्था की थी कि इंद्रिय जयी गृहस्थ कर्म का त्याग किए हुए शील संपन्न अध्ययन तत्पर धार्मिक पूजा पाठ की विधि में निपुण यति लोग ही इस सौगत आश्रम में निवास कर सके। सौगत आश्रम में निवास करने वाले आचार्य अध्यापक यति भिक्षु आदि को अपने निर्वाह के लिए किस हिसाब से खाद्य पदार्थ वस्त्र दीपक आदि प्रदान किए जाएं इसका विवरण भी इस अभिलेख में दिया गया है। यशो वर्मा ने शैव और वैष्णव आश्रमों का निर्माण कराते हुए उनके संबंध में जैसी व्यवस्थाएं की थी प्रायः वैसी ही सौगात आश्रम के लिए भी की थी। यद्यपि यशो वर्मा बौद्ध न होकर पौराणिक धर्म का अनुयायी था पर तेप प्रणम अभिलेख में उसने बुद्ध के प्रति भी प्रणाम निवेदन किया है। बुद्ध के संबंध में वहां लिखा गया है कि स्वयं बोध प्राप्त कर जिसने त्रिभुवन को ज्ञान प्रदान किया जो निर्वाण रूपी फल देने वाले तथा कृपालु है उस बंध चरण बुद्ध को नमस्कार हो। यो बोधयत त्रिभुवनम स्वयमेव बुद्ध दवा निर्वाण सौख्य फलदाय कृपात्मकाय बुद्धाय वंध्य चरणाय नमोस्त तस्मय। 961 ईस्वी के कुक समरोह अभिलेख में राजा राजेंद्र वर्मा के भृत्य राज पदाधिकारी भद्रातिशय का उल्लेख है जिसके छोटे भाई ने एक मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराया था। इस अभिलेख के प्रारंभ संघ बुद्ध और धम्म इस त्रिरत्न को प्रणाम निवेदन किया गया है। नमस संघाय संबुद्ध रत्नम प्रणमामि धर्मम। बौद्ध लोग बुद्ध धर्म और संघ इस क्रम में त्रिरत्न की पूजा करते थे पर इस अभिलेख में त्रिरत्न का क्रम संघ बुद्ध और धर्म रखा गया है जो असाधारण है। पर कोक धर्मों के अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से सूचित होता है कि 10वीं सदी के अंत में कंबुज देश में बौद्ध धर्म भलीभांति स्थापित हो गया था। राजेंद्र वर्मा के समय के एक अन्य अभिलेख प्रेरूप अभिलेख में योगाचार का उल्लेख आया है जो बौद्ध धर्म का अन्यतम संप्रदाय था। 981 ईस्वी के एक अभिलेख मनोम बनते नन अभिलेख का प्रारंभ बुद्ध प्रज्ञा पारमिता लोकेश्वर वज्री मैत्रेय और इंद्र की स्तुति के साथ किया गया है और बाद में यह उल्लेख है कि आचार्य त्रिभुवन वज्र ने बुद्ध की माता की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। 11वीं सदी में कंबु देश में बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। संभवतः सूर्य वर्मा प्रथम 2002 से 49 पहला कंबुज नरेश था जिसने कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अपने देश की परंपरा का अनुसरण करते हुए वह पौराणिक देवी देवताओं के प्रति भी आस्था रखता था। 1022 ईस्वी के लोपपुरी अभिलेख में राजा सूर्यवर्मा का एक आदेश उल्लिखित है जिसमें कि सब धार्मिक स्थानों विहारों मंदिरों यतियों स्थाविरों और महायान के भिक्षुओं को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने तप द्वारा अर्जित पुण्य राजा को अर्पित कर दें। मृत्यु के पश्चात सूर्य वर्मा को निर्वाण पद का विरुद्ध बताया गया था। इन सब बातों से सूचित होता है कि सूर्य वर्मा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसके काल में बौद्ध धर्म उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। कंबुज देश के बौद्ध राजाओं में जय वर्मा सप्तम 1182 से 1202 का स्थान सर्वोपरि है। इस राजा के अनेक अभिलेखों के प्रारंभ में बुद्ध की स्तुति की गई है। से फोंग अभिलेख का प्रारंभ ही नमो बुद्धाय से हुआ है और उसमें बुद्ध को भैषज गुरु भी कहा गया है। फिमानक अभिलेख में सर्ववेत्ता शाकेश्वर बुद्धि की स्तुति के साथ साथ त्रिकाय और लोकेश्वर की भी वंदना की गई है। ताप्रोहन अभिलेख में प्राणी मात्र के शरण भूत शरण बुद्ध को नमस्कार करने के पश्चात सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर बौद्ध मार्ग बौद्ध धर्म तथा सब प्रकार के रागों से मुक्त होते हुए भी दूसरों के कल्याण में सदा निरत रहने वाले संघ के प्रति आदर भावना प्रकट की गई है। इस राजा ने प्राज्ञा पारमिता के रूप में अपनी माता की मूर्ति का निर्माण कराया था और इस मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर मंदिर का खर्च चलाने के लिए राजविभार नामक नगर को दान में दे दिया था। जयवर्मा सप्तम की रानी इंद्र देवी बौद्ध धर्म के प्रति अगाध आस्था रखती थी और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का उसने गंभीरता के साथ अध्ययन किया था। नगेंद्र तुंग तिलकोत्तर और नरेंद्राश्रम नामक बौद्ध विहारों में उनसे बौद्ध भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी थी। इंद्र देवी ने अपनी छोटी बहन जयराज देवी को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यह सब राजा जयवर्मा सप्तम के फिमानक अभिलेख से ज्ञात होता है। भारत के अशोक के समान जयवर्मा सप्तम ने जनता के हित व कल्याण के लिए जो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए उन पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें संदेह नहीं कि इस राजा के शासनकाल में कंबुज देश में बौद्ध धर्म का बहुत उत्कर्ष हुआ था। कंबुज देश में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ही विशेष रूप से प्रचार हुआ था, पर बाद में हीनयान संप्रदाय का भी वहाँ प्रवेश हुआ। श्रीलंका में ही हीनयान का प्रचार था और संभवतः वहीं से वह संप्रदाय समुद्र मार्ग द्वारा कंबुज में प्रविष्ट हुआ था। राजा श्री नंद्र वर्मा का 13वीं सदी का एक अभिलेख कोप स्वेचाक अभिलेख पाली भाषा में मिला है, जिसका प्रारंभ त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ के प्रति नमस्कार के साथ इन शब्दों में किया गया है। विशुद्धम विशुद्धानां शुद्धि संपापक किंचनम धम्मचार्य संगचम सततम शेरसाह नमः। त्रिरत्न के प्रति प्रणाम निवेदन के पश्चात इस अभिलेख में यह बताया गया है कि महाथेर महास्थवीर सीरी सिरिंद मोली को राजा द्वारा सिरसी रिंद रतन नाम का गांव दान में दिया गया था और राजा की आज्ञा से सिरमालिनी रतन लक्खी नामक उपासिका ने एक विहार का निर्माण किया था जिसमें बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी। राजा ने इस विहार के खर्च के लिए 4 गांव प्रदान किए थे। 13वीं सदी में श्रीलंका से जिस हीनयान धर्म का कंबुज में प्रवेश हुआ था उसका प्रचार वहां निरंतर बढ़ता गया और समयांतर में उसी ने वहां महायान का स्थान ग्रहण कर लिया। बौद्ध और पौराणिक धर्मों में संबंध। कंबुज देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का यह अभिप्राय नहीं था कि उसने वहां से पुराने पौराणिक धर्म का अंत कर उसका स्थान ले लिया था। वहां जिन राजाओं या साधारण जनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने शैव या वैष्णव धर्म का प्रत्याग नहीं कर दिया था। वस्तुतः कंबुज के लोगों ने बुद्ध को भी एक देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था और उसे भी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति में एक चौथा देवता का स्थान दे दिया गया था। 1067 ईस्वी का राजा उदया वर्मा का एक अभिलेख प्रसत प्राह छेत अभिलेख है जिसमें वासुदेव के पुत्र संकर्षण द्वारा एक प्राचीन शिवलिंग जो कंवव विद्रोह के समय में क्षतिग्रस्त हो गया था की पुनः स्थापना के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु और बुद्ध की मूर्तियों के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है। शिव विष्णु और ब्रह्मा के साथ बुद्ध की मूर्ति के स्थापित हो जाने के कारण अब त्रिमूर्ति के स्थान पर चतुर्मूर्ति उपास्य हो गई थी। एन भक्तया चतुर्मूर्तिश्च शैवी संस्थापिता मुदा। 10वीं सदी के मध्य भाग के प्राह पूत लोह शिलालेख में एक ही व्यक्ति द्वारा तथागत बुद्ध ब्रह्मा विष्णु और परमेश्वर शिव की मूर्तियों के प्रतिष्ठापित लिए जाने का उल्लेख है। वस्तुतः कंबुज देश में बौद्ध धर्म पौराणिक हिंदू धर्म का प्रतिस्पर्धी नहीं था। वहां इन दोनों धर्मों में बहुत सुंदर सामंजस्य की स्थापना हो गई थी। चौथा मठ व आश्रम। कंबुज देश में मंदिरों के साथ आश्रमों व मठों का भी सत्ता थी जिनके लिए राजाओं तथा अन्य संपन्न व्यक्तियों द्वारा प्रभुत मात्रा में दान दिया जाता था। इन आश्रमों के संबंध में अनेकविध नियम थे जिन्हें राजकीय आज्ञा के रूप में जारी किया गया था। राजा यशोवर्मा ने प्रहबत अभिलेख 889 ईस्वी में यशोधराश्रम की स्थापना का उल्लेख है, जिसे चंदन पर्वत पर बनवाया गया था। इस आश्रम के लिए प्रदत्त रत्न कांचन रूप्य हाथी घोड़े गौ भैंस दास दासी उद्यान भूमि आदि का उल्लेख कर यशोवर्मा ने यह आदेश उत्कीर्ण कराया था कि ये सब वस्तुएं जो यशोवर्मा द्वारा आश्रम के लिए प्रदान की गई हैं, उन्हें अन्य कोई तो क्या राजा भी आश्रम से वापस नहीं ले सकेगा। आश्रम की राजकुटी के भीतर भाग में केवल राजा ब्राह्मण और राजपुत्र ही अपने आभूषणों को उतार बिना प्रविष्ट हो सकेंगे। इनसे भिन्न जो सर्वसाधारण लोग हैं, वे बहुत सादे परिधान में और पुष्पमाल्य आदि के बिना ही वहां जा सकेंगे। वे न कानों में कोई आभूषण पहन सकेंगे, न कोई स्वर्ण निर्मित आभूषण पहनकर भीतर जा सकेंगे, और भीतर जाकर वे भोजन एवं सुपारी नहीं खा सकेंगे। वहां कोई झगड़ा नहीं किया जा सकेगा। दुष्ट चरित्र वाले यति साधु वहां नहीं रह सकेंगे। शिव और विष्णु के पूजक ब्राह्मण श्रेष्ठ तथा शीलवान लोग वहां जप और ध्यान अवश्य कर सकेंगे। राजा के अतिरिक्त जो कोई भी आश्रम के सामने से गुजरे, उसे रस से उतर जाना होगा और बिना छाता लगाए पैदल चलना होगा। जो तप सोतम उत्तम तपस्वी आश्रम का कुलपति नियुक्त किया जाए, उसका यह कर्तव्य होगा कि जो राजपुत्र मंत्री सेनाध्यक्ष ब्राह्मण शैव वैष्णव तपस्वी व अन्य श्रेष्ठ पुरुष अतिथि के रूप में आश्रम में आए, अन्य पान सुपारी आदि से उनका यथोचित आतिथ्य करे और उनके विश्राम की समुचित व्यवस्था करे। जिस प्रकार का एक आश्रम राजा यशोवर्मा ने चंदन पर्वत पर गणेश देवता को अर्पित कर स्थापित कराया था, वैसे ही आश्रम अन्य देवताओं परमेश पंचलिंगेश्वर कार्तिकेय नारायण ब्रह्म राक्षस रुद्राणी आदि को अर्पित करके भी स्थापित कराए गए थे। उनके लिए भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए गए थे, जिनकी 11 प्रतियां विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हुई है। लोले अभिलेख के अनुसार राजा यशोवर्मा द्वारा स्थापित आश्रमों की संख्या 100 थी। चतुराश्रमा मर्यादाम शासिता कल्पयन्नपि आश्रमाणाम प्रशस्तानाम शतम दिच्छु चकारह्य। इन आश्रमों की स्थापना प्रधानतया शैव और वैष्णव मंदिरों के साथ की गई थी, जिसके कारण ये शैव आश्रम या वैष्णव आश्रम कहते थे। पर जैसा कि इस अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है कि यशोवर्मा ने अपने बौद्ध प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौगात या बौद्ध आश्रमों का भी निर्माण कराया था। इन आश्रमों में जो अध्यापक और विद्यार्थी विद्या पढ़ाने तथा पढ़ने में व्यापृत रहते थे, उनके भोजन आदि का व्यय राजा एवं अन्य संपन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। राजा जयवर्मा सप्तम के ताहप्रोय अभिलेख में यह लिखा है कि मंदिर के सत्र से अध्यापकों तथा उनके अंतेवासियों विद्यार्थियों के लिए कितनी कितनी भोजन सामग्री राजा की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान की जाती थी। सत्राण्याध्यापका धेत्रीवासीनां प्रतिवासरं खार्याय षचतुर्दश द्रोणः इच प्रस्थाश्च तांडुलः। भोजन सामग्री तथा वस्त्र आदि के किशानु तथा तंतुवायु आदि से लिए जाने का उल्लेख भी इस अभिलेख में विद्यमान है। आश्रमों में जो आचार्य अध्यापक ब्रह्मचारी व अन्य विद्यार्थी निवास करते थे, उन्हें किस हिसाब से भोजन सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती थी, इसका उल्लेख भी यशोवर्मा के अभिलेखों में किया गया है। उनके अनुसार आचार्यों और ब्रह्मचारियों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 4 दंत काष्ठ दतौन 8 सुपारी 60 तांबुल पत्र पान के पत्ते आधा आढ़क चावल 1 मुट्ठी दीपिका पाचक धान्य और 1 गट्ठा ईंधन देने की व्यवस्था की गई थी। वृद्ध और बाल आश्रम वासियों के लिए इनकी मात्रा कम रखी गई थी। आश्रमों में जहां बहुत से अध्यापक तथा विद्यार्थी रहते थे, वहां साथ ही कतिपय लेखक तथा पुस्तक रक्षक आदि कर्मचारियों को भी विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए रखा जाता था। तेप प्रणम अभिलेख में लिखा है कि 2 लेखक 2 राजकुटी संरक्षक 2 पुस्तक रक्षक 2 तांबुलिक दो पानी लाने वाले, छह पत्रकारक, ताल पत्रों की व्यवस्था करने वाले, चार मसालची, आठ भोजन पाचक एवं भोजनशाला के अन्य कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। आश्रम के कुलपति की सेवा के लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उनके लिए 9 दास, एक दासी, एक छुरक नाई तथा 3 कृषि बल दासों खेतिहरों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से अन्य अध्यापकों, आचार्यों आदि के लिए भी सेवकों के रखे जाने का विधान था। क्योंकि आश्रमों में पठन पाठन का कार्य होता था, अतः वहां मसी पात्रों, दवातों और स्याही की भी आवश्यकता पड़ती थी। ते प्रणम अभिलेख में इनके दिए जाने का भी उल्लेख है। आचार्येभ्य प्रदेयानि वृद्धभिक्षुभ्य एवं रिक्तपात्रम् मसी मृत्सना मध्ये त्रिषु दिशेदपि। पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार करने का कार्य भी इन आश्रमों में संपन्न होता था और हस्तलिखित ग्रंथों को बहुमूल्य माना जाता था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के बंधत अभिलेख में एक आश्रम को दिए जाने का दानों का उल्लेख है, जिनमें सब शास्त्रों की हस्तलिखित प्रतियां भी हैं। निश्शेष शास्त्रे लिखितैः सनाथम स पुस्तकान् ध्यायानिच्छादर्थम् तत्राश्रमेनेकविधान् अचैसीत्। राजाओं के अतिरिक्त अन्य संपन्न व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले आश्रमों में एक का उल्लेख करना यहाँ उपयोगी होगा, जिसकी सूचना जयवर्मा पंचम के समय के प्रसत कोम्फस अभिलेख से मिलती है। जयवर्मा पंचम की बहन इंद्रलक्ष्मी थी, जिसका विवाह दिवाकर भट्ट नामक ब्राह्मण के साथ हुआ था। यह दिवाकर भट्ट भारत के उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जहाँ सुंदर कालिंद यमुना नदी बहती है, जहाँ कृष्ण ने कलिय नाग का मर्दन किया था और 36,000 ब्राह्मणों द्वारा गाए जाने वाले ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि से जहाँ की भूमि प्रतिध्वनित होती रहती थी। संभवतः दिवाकर भट्ट मथुरा से कंबुज देश आए थे और उनकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर राजा राजेंद्र वर्मा ने अपनी पुत्री इंद्रलक्ष्मी का विवाह उनके साथ कर दिया था। इन दिवाकर भट्ट ने कंबुज देश के मधुवन नामक स्थान पर विष्णु महेश्वर लिंग को द्विजेंद्र के नाम से और विष्णु की एक मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया था और साथ ही द्विजेंद्रपुर में एक आश्रम की भी स्थापना की थी। द्विजेंद्रपुर देव नवत आश्रम प्रकल्पयत। कंबुज देश के इन आश्रमों में किन विषयों व विद्याओं का अध्ययन अध्यापन होता था, इस पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। पर ये आश्रम विद्या के केंद्र होने के साथ साथ धर्म के भी केंद्र हुआ करते थे और धर्म शास्त्रों का इनमें विशेष रूप से पठन पाठन हुआ करता था। राजा जयवर्मा पंचम के बनते स्त्री अभिलेख में आश्रम के कुलपति को यह आदेश दिया गया है कि वह सब आश्रम वासियों के भोजनादि और आतिथ्य की व्यवस्था करे और अध्यापक आलस्य का परित्याग कर निरंतर ब्रह्म सत्र वेद पाठ में तत्पर रहा करें। कुलस्य पत्या कर्तव्यमातिथ्यम भोजनादिकम अध्यापकेन चाचिनम ब्रह्म सत्र मतीन्द्रना। आश्रमों में किसका कितना सम्मान किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने पर किसे क्या दंड दिया जाए, इस विषय में भी सब व्यवस्थाएं अभिलेख में विद्यमान है। ये दंड राजपुत्रों, राजा के संबंधियों तथा मंत्रियों के लिए बहुत अधिक है और व्यापारियों तथा सर्वसाधारण लोगों के लिए उपेक्षया कम है। पांचवा, भाषा शिक्षा तथा साहित्य। भाषा, कंबुज देश से जो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं वे प्रायः संस्कृत और खमेर भाषाओं में हैं। बहुत से अभिलेख ऐसे भी हैं जिनमें संस्कृत और खमेर दोनों भाषाएं प्रयुक्त की गई हैं। इसमें यह संकेत मिलता है कि यद्यपि राज्य के शासन में मंदिरों, विहारों और मठों में तथा संभ्रांत वर्ग में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, पर जनसाधारण की भाषा खमेर थी, यह स्वाभाविक भी था क्योंकि भारतीय लोग उपनिवेशक के रूप में कंबोज देश में गए थे और वहाँ के पुराने निवासियों के बीच में उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। यद्यपि कंबोज के पुराने खमेर लोगों ने भारतीय धर्म और संस्कृति आदि को अपना लिया था और वे भारत की संस्कृत भाषा को भी शासन पठन पाठन तथा धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त करने लग गए थे, पर ऐसे लोग भी वहाँ विद्यमान थे जो केवल अपनी खमेर भाषा ही जानते थे। यही कारण है जो कंबोज के राजाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में बहुत से ऐसे हैं जिनमें संस्कृत के साथ साथ खमेर भाषा भी प्रयुक्त की गई है। कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जो खमेर भाषा में हैं। यद्यपि कंबोज के बहुसंख्यक अभिलेख संस्कृत में हैं, पर कुछ अभिलेखों में पाली भाषा का भी प्रयोग किया गया है। श्रीलंका द्वारा जब कंबोज में हीनयान संप्रदाय का प्रवेश हुआ तो उसके साथ ही पाली भाषा भी प्रविष्ट हुई और वहाँ के हीनयानी भिक्षु पाली त्रिपिटक के पठन पाठन में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार कंबोज में पाली का भी प्रचार हुआ और उसमें भी कुछ अभिलेख लिखे गए। प्राकृत भाषा का कोई अभिलेख कंबोज में उपलब्ध नहीं हुआ है, पर इस भाषा के ग्रंथों का पठन पाठन भी वहाँ होता था। इसके संकेत अभिलेख में विद्यमान हैं। एक सूखी हुई विशाल झील के पूर्वी तट से प्राप्त राजा यशोवर्मा के अभिलेख प्राकृत प्रिय गुणाढ्य का उल्लेख है। पारद स्थिर कल्याणो गुणाढ्यो प्राकृत प्रिय। गुणाढ्य प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध लेखक हुआ है। कंबोज देश में संस्कृत पाली और प्राकृत भाषाओं के लिए प्रधानतया ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। वहाँ के बहुसंख्यक अभिलेख इसी लिपि में हैं, पर कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिन्हें दक्षिणी भारत की पल्लव लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। भारतीय उपनिवेशक भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों से कंबोज गए थे। इस दशा में वहाँ ब्राह्मी और पल्लव दोनों लिपियों का प्रचलित होना स्वाभाविक ही था। शिक्षा। संसार के अन्य देशों के समान प्राचीन समय में कंबोज देश में भी शिक्षा का कार्य मुख्यतः मंदिरों तथा अन्य धर्म स्थानों में केंद्रित था। मंदिरों और विहारों के साथ साथ आश्रम स्थापित थे जिनमें विद्यार्थी गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। पिछले प्रकरण में इन आश्रमों पर प्रकाश डाला जा चुका है। कंबोज के ये आश्रम शैव वैष्णव और बौद्ध मंदिरों के साथ स्थापित थे और उनमें शिक्षा का कार्य करने वाले गुरु कुलपति कुलाध्यक्ष आचार्य उपाध्याय और अध्यापक कहते थे। यशोवर्मा के अभिलेखों में यहाँ उस द्वारा स्थापित आश्रमों के संबंध में राजकीय आदर्श उत्कीर्ण कराए गए हैं। कुलपति और कुलाध्यक्ष शब्द आए हैं। आश्रमे यह कुलपति निरुक्त स्थापम सोतम और कुलाध्यक्षेण कर्तव्यम कृतश्नय कर्म करय रीति। संभवतः जो एक ही अधिकारी के द्योतक हैं। कुलपति का कार्य आश्रम की व्यवस्था करना था। किसी तपस्वी ताप सोतम व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। आचार्य उपाध्याय और अध्यापक विद्या पढ़ाने का कार्य किया करते थे। यशोवर्मा के प्रसद कोपनम अभिलेख में आश्रम के प्रसंग में इनका उल्लेख हुआ है। कतिपय अभिलेखों में उन विद्वानों के नाम आए हैं जो विविध शास्त्रों में पारंगत थे और जिन्हें अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया था। ऐसा एक विद्वान शिखा शिव का दौहित्र विजय था जिसे राजा जयवीर वर्मा के प्रह को अभिलेख के अनुसार अध्यापक नियुक्त किया गया था। राजा श्रीनंद्र वर्मा के अंगकोर अभिलेख में जय मंगलार्थ नामक विद्वान का उल्लेख है जो शास्त्रों और व्याकरण में पारंगत था और जिसे राजा ने अध्यापकधिप प्रधान अध्यापक नियुक्त किया था। 9वीं सदी के राजा इंद्र वर्मा के प्रसद कंदोल दोम अभिलेख में शिव सोम नामक एक आचार्य का उल्लेख है जो सर्व विद्याओं में निष्णात था। शिव सोम के गुरु भगवान शंकर थे जिनके चरणों में बैठकर उसने सब शास्त्रों का अध्ययन किया था। कंबोज देश में किन विषयों का अध्ययन अध्यापन होता था इस संबंध में भी अनेक संकेत अभिलेखों में विद्यमान है। शैव वैष्णव बौद्ध आदि धर्मों के धार्मिक साहित्य का कंबोज की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान था, पर उसके अतिरिक्त व्याकरण काव्य संगीत नृत्य कला ज्योतिष आदि की भी वहाँ शिक्षा दी जाती थी। इंद्र वर्मा के प्रसद कंदोल अभिलेख में उन शास्त्रों तथा विद्याओं का उल्लेख है जिसमें कि आचार्य शिव सोम निष्णात थे। वह वेदवित्त तर्क शास्त्र योग तथा व्याकरण में प्रवीण और पुराण महाभारत संपूर्ण शैव साहित्य तथा काव्यों के पंडित थे। नौवीं सदी के प्रसिद्ध कोकपो अभिलेख में श्री स्वामी नाम के एक पंडित का उल्लेख है जो वेद और व्याकरण का ज्ञाता था तथा तर्क शास्त्र में पारंगत था। श्री स्वामी यस्य च पिता वेद व्याकरणोत्तम तर्काभिपारगो विप्रो ब्रह्मवैकम मुखम दधत। यशो वर्मा के लोले अभिलेख में राजा को सब शास्त्रों और शस्त्रों सब शिल्पों भाषाओं और लिपियों तथा नृत्य संगीत आदि विज्ञानों का पंडित कहा गया है। यस सर्व शास्त्र शस्त्रेषु शिल्प भाषा लिपिष्वपि नृत्य गीतादि विज्ञानेश्वादि करते व पंडित। दसवीं सदी के अंत के राजा जयवीर वर्मा के प्रसत त्रपन सन अभिलेख में कविंद्र पंडित राजा द्वारा विष्णु मंदिर को दिए गए एक भूखंड का उल्लेख है। इसमें कविंद्र पंडित के विषय में यह कहा गया है कि वह पांचों व्याकरणों का मर्मज्ञ, शब्द शास्त्र, अर्थ शास्त्र, आगम, काव्य महाभारत और रामायण का विद्वान था और इन्हें स्वयं पढ़कर उसने शिष्यों को पढ़ाया था। यह पंच व्याकरणातग शब्दार्थगम शास्त्रनी काव्यम भारत विस्तारम रामायण च योगधित शिष्यानपयधीजगपति। सातवीं सदी के राजा ईशान वर्मा के संबूर प्रेय कुक अभिलेख में विद्याविशेष नामक आचार्य का उल्लेख है और उसे शब्द शास्त्र, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और सौगत बौद्ध दर्शन का समीक्षक विद्वान कहा गया है। शब्द वैशेषिक न्याय समीक्ष सुगता ध्वनाम राजा जयवर्मा प्रथम के तन कन अभिलेख में एक ब्राह्मण परिवार का वर्णन है जिसके लोग राज सेवा में उच्च पदों पर नियुक्त थे। इस परिवार के धर्म स्वामी नामक पुरुष को विद्वान और वेद वेदांगों का पारंगत कहा गया है। अत्रासीद ब्राह्मणों विद्वान वेद वेदांग पारग राजा उदयादित्य वर्मा के समय के श्लोक का थोम अभिलेख में जयेंद्र पंडित का उल्लेख है। इस अभिलेख के खमेर भाषा के भाग में यह बताया गया है कि जयेंद्र पंडित ने उदयादित्य वर्मा को सिद्धांत व्याकरण धर्मशास्त्र तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी थी। बनथत अभिलेख के अनुसार भूपेंद्र पंडित सुभद्र मुर्गशिव नामक आचार्य त्रयी ऋक् साम और यजुर्वेद आदि अनेक वेद वाङ्मय का कोविद शैव वाङ्मय में पारंगत न्याय सांख्य और वैशेषिक दर्शनों में निष्णात तथा शब्द शास्त्र व्याकरण और भाष्य महाभाष्य का विद्वान था। इस भूपेंद्र पंडित के आश्रम में जहाँ निरंतर यज्ञ में दी गई आहुतियों के धूम की सुगंध व्याप्त रहती थी वहाँ कठिन शास्त्रों के अभिप्राय के संबंध में मतभेद के कारण विद्यार्थियों में जो वाद विवाद चलते रहते थे उनकी ध्वनि से भी उसका आश्रम गुंजयमान रहता था। विद्यापवर्ग विहिता पचीति प्रबंधे यस्राश्रमे नवरात हुति धूमगंधे दुर्गागमेषु मतिभेद कृतार्थ नित्या विद्यार्थिनां विविधतां ध्वनि रुत सपसर्प। वेद वेदांग दर्शन काव्य इतिहास रामायण महाभारत आदि के अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र का भी कंबुज देश में पठन पाठन होता था। आयुर्वेद एक उपवेद है पर सुश्रुत सदृश ग्रंथों का कंबुज के अभिलेखों में उल्लिखित होना वहाँ इस शास्त्र की शिक्षा का स्पष्ट संकेत है। यशो वर्मा के लोले अभिलेख में राजा को प्रजा की व्याधि को हरण करने वाला वैद्य और उसकी वाणी को सुश्रुत से उदित सुश्रुतोदिता कहा गया है। कंबुज देश के आश्रमों में जहाँ इन विविध शास्त्रों एवं विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी वहाँ गुरु और शिष्य में पिता और पुत्र का संबंध भी रहता था। उदयादित्य वर्मा के श्लोक काक अभिलेख में एक आश्रम के गुरु और शिष्यों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया गया है। शिष्यान यथा चेष्टीय योतुपदेष्टा यथात्मजान वा जनकोपि यत्नात्। जैसे पिता अपनी संतान का यत्नपूर्वक पालन करता है वैसे ही वहां गुरु अपने शिष्यों का ध्यान रखता हुआ उन्हें शिक्षा प्रदान करता था। शिक्षा केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी, स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त किया करती थी। सूर्य वर्मा द्वितीय के बनथत अभिलेख में तिलका नामक एक महिला का उल्लेख है जो परम विदुषी थी। विद्वानों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ नरेंद्र गुरु ने तिलका की विद्वता से प्रभावित होकर उसे वागीश्वरी भगवती की उपाधि प्रदान की थी और भरी परिषद में उसकी विद्वता को स्वीकार किया था। सूर्य वर्मा के प्रसत्ता केयो अभिलेख में एक अन्य विदुषी महिला का उल्लेख है जिसका नाम सती जनपदा था। वह आचार्य योगेश्वर की शिष्या थी और केशव नामक ब्राह्मण के साथ उसका विवाह हुआ था। राजा जयवर्मा सप्तम की रानी इंद्रदेवी परम विदुषी थी। वह पहले नगेंद्र तुंग तिलकोत्तर और नरेंद्राश्रम नामक आश्रमों में अध्यापन का कार्य किया करती थी। वहाँ वह सरस्वती के समान विरजती थी और शिष्याओं द्वारा घिरी रहती थी। कम्बुज की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार था, यह प्रमाणित करने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं। साहित्य वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का कम्बुज अभिलेख में सामान्य रूप से बार बार उल्लेख आया है, जिससे प्राचीन भारतीय वांग्मय के इन ग्रंथों की वहाँ सत्ता सूचित होती है। पर कतिपय अभिलेखों में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के विशिष्ट ग्रंथों के नाम भी आए हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा। राजा यशो वर्मा के एक अभिलेख में प्राकृत काव्य सेतु बंध का संकेत है, जिसे कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती देवी के पुत्र वाकाटक राजा प्रवरसेन के नाम से लिखा था। अभिलेख का श्लोक इस प्रकार है, एन प्रवरसेनेन धर्म सेतु विवृण्णवता पर परह प्रवरसेनोऽपि जितः प्राकृत सेतु कृतः। राजा यशो वर्मा ने अपनी प्रवर सेना द्वारा स्थापित धर्म सेतुओं से दूसरे प्रवर सेना को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसने तो केवल एक साधारण सेतु का ही निर्माण किया था। एक अन्य अभिलेख में यशो वर्मा के संबंध में यह कहा गया है कि मयूर रचिते पादस्तवे तुष्टो अंशुमानिति स्पर्धये वानवहम राज्य राजहंस कृते तुय। सूर्य एक मयूर कवि की पद्मय प्रशंसा से संतुष्ट हो गया, किंतु इसके विपरीत राजा यशो वर्मा हंसगण से प्रतिदिन अपने चरण पुजवाता रहा। कवि मयूर महाकवि बाण का श्वसुर था और उसने सूर्य शतक काव्य की रचना की थी। अभिलेख के इस श्लोक में मयूर कवि के प्रति श्लेषोक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार की श्लेषोक्तियां बृहत कथाकार गुणाढ्य काम सूत्रकार वात्स्यायन तथा महाभाष्यकार पतंजलि के संबंध में भी अभिलेखों में पाई जाती हैं, जिससे कम्बुज के विद्वानों का इनके ग्रंथों से परिचित होना प्रमाणित होता है। कम्बुज के लोग मनुस्मृति से भी भरी भांति परिचित थे। राजा उदय वीर वर्मा के स्तोक काक थोम अभिलेख में मानव नीतिसार का उल्लेख है, जो मानव संप्रदाय का नीति विषयक ग्रंथ था। मनु द्वारा ही मानव विचार संप्रदाय का प्रारंभ किया गया था। यशो वर्मा के प्रसद कोमनप अभिलेख में मनु संहिता का एक श्लोक भी दिया गया है, जो इस प्रकार है, वितम बंधु वर्य कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यदुतरम। पंच कारणों से मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है, धर्म से, बंधु बांधवों से, आयु से, कर्म से और विद्या से। इनमें पहले की तुलना में बाद में कहे गए कारण अधिक महत्व के हैं, अर्थात धन आयु या कर्म की तुलना में विद्या के कारण मनुष्य को अधिक सम्मान प्राप्त होता है। भारत के छह आस्तिक दर्शनों में वैशेषिक और न्याय दर्शनों का अनेक अभिलेखों में उल्लेख आया है। संभोर प्रेयी कुक अभिलेख में वैशेषिक और न्याय दोनों दर्शनों के नाम दिए गए हैं और यशो वर्मा की सूखी झील के पूर्वी तट पर स्थित अभिलेख में इस राजा को न्याय शास्त्र का वेता कहा गया है। अप्रमेयतम पक्ष मजयन न्याय वित कलिम सांख्य दर्शन का उल्लेख भी इसी अभिलेख में आया है। यतो वदंतया सांग ख्यंतु तत्व ज्ञानु गुणु विस्तरम। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी कम्बुतेश में पठन पाठन होता था। राजा जयवर्मा प्रथम के अभिलेख में दो मंत्रियों का उल्लेख है, जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञो धर्मार्थविव रूपिणो मनुसंहिता सदृश ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता था और कौटिल्य अर्थशास्त्र सदृश नीति ग्रंथों को अर्थशास्त्र, जो धर्मशास्त्र कम्बुज देश में विशेष रूप से प्रचलित थे। उनमें मनुसंहिता के अतिरिक्त शैव स्मृति और शैव श्रुति का विशिष्ट स्थान था, क्योंकि कम्बुज में मुख्यतया शैव धर्म का प्रचार था, अतः स्वाभाविक रूप से वहां के आचार विचार शैव धर्म ग्रंथों पर आधारित थे। राजा राजेंद्र वर्मा ने तो उनके आधार पर एक नई सदाचार विधि का भी निर्माण कराया था, जैसे कि उसके मेबोन अभिलेख में सूचित किया गया है। स कल्पयामास महेंद्र कल्प सदा सदाचार विधिम विधेयम सैव श्रुति सम मृत्युदिताम स्पर्याम पर्याप्त मासामिह देवतानाम। ज्योतिष ग्रंथों में होरा शास्त्र कंबुज देश में पढ़ाया जाता था। राजा यशो वर्मा के फिमानक अभिलेख में सत्याश्रय नामक एक मंत्री का उल्लेख है, जिसे होरा शास्त्र रूपी समुद्र के पार उतरने वाला कहा गया है। तस्य राजाधिराजस्य होरा शास्त्र विविध पराग यश श्री सत्याश्रया खयो भून मंत्री मंत्रीव वज्रिण। रामायण के रचयिता वाल्मीकि मुनि का उल्लेख यशो वर्मा की सुखी झील के पूर्वी तटवर्ती अभिलेख में है। वाल्मीकि जमुखो दगिनम स्वपुत्रो राघवश्यतु और महाभारत के संकलयिता व्यास का प्रसाद प्रथात के अभिलेख में भवज्ञानेन निहितम व्यास सत्र निबंधनम। इस अभिलेख के अंत में यह भी कहा गया है कि जो कोई व्यास के ग्रंथ को नष्ट करेगा वह याव चंद्र दिवाकरो नरक में रहेगा। कंबुज देश में महाभारत का कितना आदर था यह इससे स्पष्ट है। व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य का कंबुज में बहुत प्रचार था। अभिलेखों में अनेक ऐसे प्रयोग आए हैं जो पाणिनि और पतंजलि के व्याकरणों के अध्ययन का संकेत करते हैं। इसी प्रकार कितने ही ऐसे श्लोक भी अभिलेखों में विद्यमान हैं जो कालिदास भारवी आदि के काव्यों की छाया प्रतीत होते हैं। यह तभी संभव था जबकि इन महाकवियों के काव्यों का कंबुज देश में भलीभांति पठन पाठन होता हो। ब्राह्मण हिरण्यदामा द्वारा जिस तंत्र विधि की शिक्षा शिव कैवल्य को दी गई थी उसमें प्रयुक्त होने वाले ग्रंथों के नाम भी अभिलेखों में दिए गए हैं, जिन्हें इसी अध्याय में देवराज संप्रदाय पर प्रकाश डालते हुए लिखा जा चुका है। शैव आगम के ये ग्रंथ भी भारत से ही कंबुज देश में लाए जाए गए थे। वास्तविकता यह है कि भारत में दर्शन काव्य कला आयुर्वेद आदि का जो भी साहित्य विकसित हुआ भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान कंबुज में भी उसका प्रवेश हुआ और वहाँ के लोग भी उसके अध्ययन में तत्पर रहे। इसका कारण यह था कि भारत और कंबुज देश में संबंध निरंतर कायम रहा था और दोनों के बीच में विद्वानों का आना जाना होता रहता था। हिरण्यदामा और दिवाकर भट्ट सदृश कितने ही भारतीय विद्वान कंबुज गए और वहाँ उन्होंने सम्मानित स्थान प्राप्त किए, इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इन्हीं भारतीय विद्वानों के साथ संपर्क का यह परिणाम था कि कंबुज देश में अनुश्रुति साहित्य आदि की वही परंपरा विकसित हो गई थी जो कि भारत में थी। वशिष्ठ दलीप युधिष्ठिर भीम रावण कृष्ण आदि का कंबुज के अभिलेखों में अनेक बार उल्लेख आया है और इन अभिलेखों को पढ़कर यह कल्पना कर सकना कठिन हो जाता है कि इन्हें भारत से सहस्त्रों मील दूर पर स्थित एक देश में उत्कीर्ण कराया गया था। छठा आर्थिक जीवन। यद्यपि कंबुज देश के अभिलेखों का संबंध प्रधानतया धर्म मंदिरों और उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों के साथ है, पर उनसे वहां की आर्थिक दशा से के संबंध में भी कुछ संकेत मिल जाते हैं। कंबुज देश का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था, यही वहां के निवासियों की आजीविका के प्रधान साधन थे। छठी सदी के अंत के राजा ईशान वर्मा के वात्सवाब अभिलेख में राजकीय आज्ञा द्वारा देव मंदिर के लिए प्रदान किए गए किंकरों नौकरों गांवों भैंसों तथा चावल के खेतों का उल्लेख है। दसवीं सदी के फुनोम बांतो अभिलेख में भी क्षेत्रों खेतों किंकरों और केदारों साग सब्जी के खेतों में दान दिए जाने का वर्णन है। लोगों का मुख्य भोजन तंदुल चावल था, पर उसके अतिरिक्त कोदो मूंग तिल आदि कृषिजन्य पदार्थों तथा घी दूध मधु तेल गुड़ आदि अन्य भोज्य वस्तुओं का भी अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। खेती के लिए बैल आदि पशुओं का प्रयोग होता था और किंकर तथा दास कृषि बल खेती करने वाले दास खेती का काम किया करते थे। 13वीं सदी में शू ता कुवान नामक चीनी यात्री कंबुज आया था। उसने वहां का जो विवरण लिखा है उसमें खेती के संबंध में यह आया है कि इस देश में प्रतिवर्ष 3 बार फसलें काटी जाती थी। खेतों को उर्वर बनाने के लिए पाखाना इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्योंकि लोग गंदा समझकर उससे घृणा करते थे। यहाँ गेहूँ की बहुत मांग है किंतु चीन से उसका निर्यात निषिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंबुज देश में गेहूं की पैदावार नहीं होती थी। अभिलेखों में उसका उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि कम्बु देश के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती थी, पर अनेक व्यवसाय एवं शिल्प भी वहाँ विकसित हो गए थे। तंतुवाय, जुलाहा, सुनार या गांधिक, स्थापिति, शिल्पी आदि के व्यवसाय अच्छी उन्नत दशा में थे। जयवर्मा सप्तम के तापोह अभिलेख में राजा द्वारा अपने गुरु को दिए गए दान का विशद रूप में उल्लेख है। दान में दी गई वस्तुओं में तंतुवाय के घर से और ग्राम की दुकानों से मंगाए गए कपड़ों के हजारों जोड़ों का भी वर्णन है। तंतुवाय गृहात ग्रामादापान आदेश वाश्याम युगलान सहस्त्राणी चतवार दिश्य पंचकम। इसी प्रसंग में चीनांशुक पटों, चीनी रेशम से बने वस्त्रों और देव वस्त्रादि विविध वस्त्रों के भी दान दिए जाने का उल्लेख है। देवास्त्रा दिवशास्त्राणाम युगलानि सितानि षट चीनान सुखमया पंच चतवार श्रतपाटा अपि। जिससे सूचित होता है कि कम्बुज देश में वस्त्र व्यवसाय अच्छी उन्नत दशा में था और वहाँ सूती तथा रेशमी सब प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। कम्बुज देश में आभूषण पहनने का भी बहुत रिवाज था और स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही कानों, गले, बाहुओं आदि में गहने पहना करते थे। वस्त्रों पर भी सोने और चांदी का जरी का काम करने की वहां प्रथा थी, इसलिए सुनार का व्यवसाय भी वहां बहुत उन्नत दशा में था। सुनार या स्वर्णकार के लिए अभिलेखों में चामिर कार शब्द प्रयुक्त किया गया है। जयवीर वर्मा के प्रह को अभिलेख में चामी करकारों के वर्ण या वर्ण का उल्लेख है और यह लिखा है कि देवीपुर की जनता के निवेदन को स्वीकार कर राजा ने वहां के निवासियों को चामी करकार वर्ग का सदस्य बनने की अनुमति प्रदान कर दी थी। राजा धीराजो नगे नेत्र रंध्र देवीपुरस्था जनतास्त दानिनम चकार चामी करकार वर्षने निवेदना तस्य सुशिल्प बुद्धि। कम्बुज के अभिलेख में शिल्पियों और स्थापकाचार्य स्थापिति का भी उल्लेख विद्यमान है। राजा जयवर्मा परमेश्वर के बायोन अभिलेख में शिल्पियों, स्थापकाचार्यों, ब्राह्मणों, ज्योतिषियों आदि को दी गई दान दक्षिणा का विवरण दिया गया है, जिसमें सोने और चांदी के बर्तन भी सम्मिलित हैं। स्थापकाचार्य या स्थापित मकान बनाने का काम करते थे और शिल्पियों से लुहार, बढ़ई आदि अन्य कारीगर अभिप्रेत थे। राजा हर्ष वर्मा तृतीय के पलहल अभिलेख में एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख है, जिसके कतिपय सदस्यों ने राजा की आज्ञा से शिल्पी व्यवसाय स्वीकार कर लिया था। शिल्पवित्त मुप श्लिष्ठ परिचरणेन वृतम तदाज्ञा तदा शिल्पी भूत्वा धर्माहयो नरः। कम्बुज देश में शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि की मूर्तियों का निर्माण होता था, नौकाएं बनाई जाती थीं और विविध प्रकार के वाहन, पालकी, गाड़ी आदि भी तैयार किए जाते थे। इनके लिए पृथक प्रकार के शिल्पी होते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। कम्बुज देश के ये विविध शिल्पी एवं व्यवसायी संगठनों में भी संगठित थे, इसके भी कुछ संकेत अभिलेखों में विद्यमान है। 13वीं सदी के राजा श्रीनंद्र वर्मा के बनते स्त्रेयी अभिलेख में त्रिपटाक नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है, जो इस प्रकार के एक संघ, ऐसे संघों को भारत में श्रेणी कहा जाता था, का अध्यक्ष या मुखिया था। व्यवसायियों के इन संगठनों पर अभिलेखों से कोई परिचय नहीं मिलता। कम्बुज देश में व्यापार की क्या दशा थी, इस संबंध में भी कुछ संकेत अभिलेखों में विद्यमान है। राजा जयवर्मा सप्तम के ताहप्रोह अभिलेख में चीनांशुक का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि रेशम चीन से कम्बुज में बिक्री के लिए आया करता था। 10वीं सदी के राजा हर्ष वर्मा के अभिलेख में एक राजाज्ञा का उल्लेख है, जिस द्वारा वाप चीन नामक व्यक्ति के जब्त हुए माल को छोड़ देने का आदेश दिया गया था। इस माल में सोना, चांदी, हाथी, गाय, बैल आदि थे। संभवतः वाप चीन एक चीनी था जो व्यापार के लिए कम्बुज देश में बसा हुआ था। व्यापार के विषय में चीनी यात्री शूता कुबान के ये कथन महत्व के हैं, इस देश में स्त्रियां व्यापार का कार्य करती हैं, चीन की सोने और चांदी की कीमत बहुत होती है और इनके बाद चीन के रेशमी वस्त्र, रांगा, चीनी बर्तन, हल्दी, कागज, शोरा आदि अधिक महत्व रखते हैं। स्पष्ट है कि रेशमी वस्त्र, कागज आदि चीन से कम्बुज देश में आया करते थे। कम्बुज के अभिलेखों में किंकरों और दास दासियों का अनेक बार उल्लेख हुआ है। मंदिरों को दान देने के प्रसंग में जहाँ सोना, चांदी, धन, धान्य आदि का वर्णन किया जाता है, वहाँ साथ ही प्रायः दास दासियों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। राजा जयवर्मा सप्तम के प्रखान अभिलेख में उस द्वारा स्थापित आश्रमों, मंदिरों, धर्मशालाओं आदि में काम करने के लिए 2,08,532 दास दासियों के दिए जाने का वर्णन है। इसमें संदेह नहीं कि कंबुज देश में दास प्रथा की सत्ता थी। संभवतः धातु व्यवसाय भी कंबुज में भली भांति विकसित था। अभिलेखों में बहुत सी धातुओं के नाम आए हैं, जिनमें लोहा, तांबा, कांसा, सीसा, सोना, चांदी और रांगा उल्लेखनीय है। जयवर्मा सप्तम के प्रखान अभिलेख में इन सब का वर्णन है। इसी अभिलेख में पद्मरग, मुक्ता, रत्न आदि का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि बहुमूल्य धातुओं के साथ साथ मणि, मुक्ता आदि का भी कंबुज के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। वस्तुओं को तलने के लिए कंबुज देश में जिन बाटों का प्रयोग होता था, उनके विषय में कुछ सूचनाएं अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। ये बाट खारिका, द्रोण, प्रस्थ और कुदूब थे। खारिका 128 शेर के बराबर होता था और द्रोण 5 शेर के, प्रस्थ 1 शेर के लगभग होता था। कुदूब का प्रयोग घी, तेल, मधु सदृश द्रव पदार्थों को नापने के लिए किया जाता था। इसमें संदेह नहीं कि कंबुज देश का आर्थिक जीवन अच्छी उन्नत दशा में था, जिसके कारण वहां के प्रतापी राजा दूर दूर तक विजय यात्राएं करने में समर्थ हुए थे।